युविका के प्रोजेक्ट देने की वजह से तरुण ईशानी के साथ अपने रिश्ते सुधारना चाहता था। उसने घर आते ही इशिका को अपने साथ काम करने के लिए कहा और साथ ही अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए वो आज रात उसके क्लोज आना चाहता था। इशिका उसे टालने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर रात के 12 बजे के करीब तरुण माया के साथ रूही के कमरे में आ गया। माया आज रूही के साथ सो रही थी, तो वहीं तरुण इशिका का हाथ पकड़कर उसे ज़बरदस्ती अपने कमरे में ले गया। इशिका के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थीं। कमरे के अंदर पहुंचते ही तरुण ने रूम का दरवाज़ा बंद किया और फिर इशिका की कलाई पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। तरुण की नज़रों में वो ईशानी थी। उसने इशिका के नोज़ पर अपना नोज़ रब करते हुए कहा, आज रात तुम्हारी सारी शिकायतें मिटा दूंगा, मुझे माफ़ कर दो। रूही के होने के बाद से हमारा रिश्ता थोड़ा बिगड़ सा गया था। तुम अपना पूरा टाइम रूही को देने लगी और इस चक्कर में मैं रश्मि की बातों में आ गया। मेरा यकीन करो, पिछले कुछ महीनों से हमारे बीच कुछ नहीं है। तरुण अपनी बात कहते हुए इशिका को समझाने की कोशिश कर रहा था और साथ ही उसके होंठ इशिका की तरफ बढ़ रहे थे। इससे पहले कि उसके होंठ इशिका के होठों को छू पाते, इशिका ने उसे जोर से धक्का दिया और उसे उंगली दिखाते हुए सख्त आवाज़ में कहा, अपनी ये झूठी दलीलें किसी और को जाकर देना। तुम्हारी मॉम के सामने मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारी इंसल्ट हो। बाकी इस बात की उम्मीद छोड़ दो कि हमारे बीच सब कुछ सही हो सकता है। ये झूठे रिश्ते का दिखावा तुम पिछले कुछ सालों से कर रहे हो, वही करते रहोगे तो बेहतर होगा। इशिका का इस तरह खुद को धकेलना और उनके रिश्ते को आगे बढ़ाने से मना करना तरुण को रास नहीं आया। उसकी आंखें गुस्से से लाल होने लगीं और नसें तनने लगीं। तरुण ने तुरंत ही खुद को संभाला और फिर इशिका की बाजू पकड़कर उसे बेड पर धकेलते हुए कहा, लगता है कुछ ज्यादा ही पर निकल आए हैं तुम्हारे। मैं यहाँ सब ठीक करने का सोच रहा हूँ और तुम्हारे ड्रामे ही खत्म नहीं हो रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई और मिल गया है तुम्हें? मुझे भी अपनी तरह समझा है क्या? जो तुमसे प्यार नहीं मिलेगा तो हर कहीं पर मुंह मारने लग जाऊंगी, इशिका ने तरुण पर तंज कसते हुए कहा। तरुण गुस्से में तेज सांस लेते हुए इशिका की तरफ देख रहा था। वो अपने बेड की तरफ बढ़ रहा था तभी इशिका ने अपनी वार्निंग फिंगर उसे दिखाते हुए सख्त लहजे में कहा, इस वक्त तुम्हारे दिमाग में जो भी गंदे ख्याल चल रहे हैं उन्हें यहीं पर विराम दे दोगे तो बेहतर होगा। क्या चाहते हो तुम? अगर गलती से भी युविका यहाँ पर आई और उसने मेरी बिगड़ी हुई हालत देखी तो क्या वो तुम्हें अपना प्रोजेक्ट दे देगी? इशिका समझ गई थी कि तरुण उसके साथ ज़बरदस्ती करना चाहता था। उसने युविका का सहारा लिया और तरुण के कदमों को रोक दिया था। इतने दिनों में इशिका को इतना तो पता चल ही गया था कि तरुण एक लालची इंसान है, वो पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। तरुण ने खुद के गुस्से को काबू किया और मुठियाँ कसते हुए तेज आवाज में चिल्लाकर कहा, बाहर निकलो मेरे कमरे से, तुम्हारी औकात ही नहीं है कि तुम मेरे साथ प्यार से लाइफ बिता सको। मुझे एक ऐसे इंसान के साथ प्यार से लाइफ बितानी भी नहीं है जो झूठ बोलता हो। पहले खुद को साबित करो कि तुम्हारा उस लड़की के साथ कोई रिश्ता नहीं है, शायद उसके बाद में हाँ का भी दूं, इशिका ने तरुण को टालने के लिए कहा। वो उसे पूरी तरह नाराज भी नहीं कर सकती थी। तरुण को ईशानी पर गुस्सा होना, इसका मतलब सीधे सीधे यही था कि वो ईशानी को तलाक नहीं देता। इस वक्त इशिका का पहला लक्ष्य ये नहीं था कि वो ईशानी को इस झूठे रिश्ते से आज़ाद करवा दे। तरुण ने गहरी सांस ली और इशिका को दोनों कंधों से पकड़कर नर्म लहजे में कहा, तुम्हें जल्द ही इस बात का यकीन दिला दूंगा, मुझे सच में तुम्हारी और रूही की परवाह है। ठीक है, फिर साबित करो, इशिका ने चैलेंजिंग वॉइस में कहा। बस थोड़ा टाइम दे दो, एक हफ्ते बाद जब तुम मेरे साथ ऑफिस में आकर काम करोगी तो तुम्हें खुद ही सच का पता चल जाएगा, तरुण ने जवाब दिया। इशिका कुछ नहीं बोली, बस हाँ में सिर हिला दिया। वो बाहर जाने लगी तभी तरुण ने काफ़ी प्यार से कहा, थोड़ी देर पहले मैंने जो भी किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। तुम यहाँ सो सकती हो, मैं गेस्ट रूम में जाकर सो जाऊँगा, मॉम का कमरा भी खाली है। उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं लिविंग रूम में सो जाऊँगी, इशिका ने इतना ही कहा और फिर कमरे से बाहर आ गई। हालांकि बाहर आते ही उसने इतनी राहत की सांस ली, आज उसने तरुण को किस तरह रोका था ये उसका दिल ही जानता था। अभी के हालात देखकर इशिका को इतना तो समझ आ गया था कि ईशानी की ज़िंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं थी। उसने गहरी सांस लेकर अपने मन में कहा, पता नहीं ये शैतान मेरी बहन के साथ क्या क्या नहीं करता होगा, शायद यही वजह रही होगी जो आखिरी वक्त में उसकी जीने की सारी उम्मीद खत्म हो गई थी। एक बार के लिए इशिका की आंखों में ईशानी का चेहरा तैर गया। इशिका की आंखों में हल्की नमी थी और चेहरे पर छोटी सी मुस्कान। उसने अपने मन में धीरे से कहा, तुम्हारी फिजिकल फीचर्स थोड़ी थोड़ी माँ से मिलती हैं, अगर माँ तुम्हें देखती तो वो बहुत खुश होती, लेकिन मुझे माफ़ करना, मैं उन्हें कभी तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगी क्योंकि सच पता चलने पर न जाने उनके ऊपर क्या बीतेगी। अपने ख्यालों में खोई हुई इशिका को नींद आ चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु रात के वक्त गार्डन एरिया में टहल रहा था। उसे इशिका की याद आ रही थी। कुछ तो तरीका निकालना होगा जिससे मैं रोज़ाना उससे मिल सकूं। तरुण ने आखिरी बार मेरे साथ जो भी हरकत की थी उसके बाद मुझे नहीं लगता कि वो मेरे सामने भी आना चाहेगा, नक्ष को वहां भेजा तब भी प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं उसका और इशिका का आमना सामना न हो जाए। अभिमन्यु टहलते हुए खुद से बातें कर रहा था। उसे इशिका अपने पास तो चाहिए थी, लेकिन कोई भी छोटी सी गलती करके भी अभिमन्यु इशिका की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहता था। अभिमन्यु गार्डन में टहल रहा था तभी पृथ्वी वहां पर आया। वो अभिमन्यु की उलझन को समझ सकता था। अभिमन्यु के बिना कहे ही पृथ्वी को समझ आ रहा था कि उसका इशिका के बिना मन नहीं लग रहा। पिछले कई महीनों से इशिका उसके साथ रह रही थी, इस वजह से उसे उसकी आदत हो चुकी थी। पृथ्वी को देखते ही अभिमन्यु ने अपने चेहरे के भावों को सामान्य किया और हमेशा की तरह बहाना लगाते हुए कहा, नींद नहीं आ रही थी तो सोचा थोड़ी देर टहल लेता हूँ, वैसे भी पूरे दिन काम में कहाँ वॉक होती है। इशिका वहाँ होती तो अभिमन्यु के इस तरह बहाना लगाने पर जरूर उसके होठों पर एक हल्की सी हंसी छूट जाती। पृथ्वी ऐसा नहीं कर सकता था। उसने हाँ में सिर हिलाया और धीमी आवाज में कहा, मैं यहाँ आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया था। मैंने सुना है चौधरी एम्पायर्स तरुण दीवान की कंपनी के साथ डील करने जा रहा है। चौधरी एम्पायर्स के साथ हम डील करेंगे तो वो कंपनी ऑटोमेटिकली हमारे अंडर आ जाएगी। आइडिया अच्छा है, इसी बहाने हम इशिका से भी, मैं इशिका के पास रहूंगा तो उसका ध्यान भी रख पाऊंगा, अभिमन्यु ने तुरंत बात बदलते हुए कहा। ठीक है, फिर मैं चौधरी एम्पायर से बात कर लेता हूँ, पृथ्वी बोला। अभिमन्यु ने उसकी बात पर हामी भरी और उसे वहां से जाने का इशारा किया। पृथ्वी कुछ कदम आगे पहुंचा ही था कि उसने पलटकर अभिमन्यु से कहा, अगर चौधरी एम्पायर्स के साथ हमारे कनेक्शन बन गए तो हम उन्हें पार्टी में आराम से बुला पाएंगे। अभिमन्यु ने अपने चेहरे के भावों को बिल्कुल सामान्य रखा, हालांकि उसे दिल ही दिल में खुशी महसूस हो रही थी। उसने सिर्फ सिर हिलाया और फिर वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ एक अनजान आइलैंड पर राधिका अभी भी मर्चेंट फैमिली के कैद में थी। दवाइयां लेने की थोड़ी देर बाद ही राधिका नींद के आगोश में थी। वो दोनों ही इस बात से बेखबर थी कि कोई उनके हर एक मोमेंट पर नजर बनाकर रख रहा था। इस वक्त गौतम और अर्पित एक लेबोरेटरी जैसी जगह पर थे।
वहाँ एक बड़ी सी स्क्रीन पर वो राधिका और श्रुति को देख सकते थे और साथ ही उनकी बातें भी सुन सकते थे। उनकी बातें सुनने के बाद जहाँ गौतम के चेहरे पर गुस्से के भाव थे, तो वहीं अर्पित के चेहरे पर एक ईविल स्माइल थी। उसने जल्दी से कहा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि कोई कड़ी छूट रही है, इसका मतलब राधिका की एक और बेटी है। हो सकता है उस लड़की का IQ लेवल हमारी उम्मीद के हिसाब से हो। हम लोग इंडिया से काफ़ी दूर इस अनजान आइलैंड में हैं और इतने सालों तक आदर्श के बारे में कुछ पता लगाने की कोशिश भी नहीं की। तुम ऐसा करो, कुछ दिन गोवा जाओ और पिछले 23 सालों में सिंघानिया फैमिली के साथ जो भी छोटी बड़ी घटनाएं हुई हैं उसके बारे में मुझे अपडेट दो। मुझे किसी भी कीमत पर राधिका की दूसरी बेटी चाहिए, गौतम ने ऑर्डर पास करते हुए कहा। अर्पित ने सिर हिलाकर उनकी बात पर सहमति जताई। कुछ ही देर में अर्पित वहां से चला गया था, जबकि गौतम अभी भी वहीं थे। उन्होंने एक नज़र अपने पीछे हो रहे एक्सपेरिमेंट को देखा। आज भी वो एक खास मकसद के लिए इंसानों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, इस उम्मीद के साथ कि कोई राधिका से भी ज्यादा इंटेलिजेंट और हाई क्वालिटी जीन्स के साथ इस दुनिया में मौजूद हो। गौतम वहां से जाने को हुए तभी आदित्य वहां आ गया। उसे देखते ही गौतम का चेहरा एक पल के लिए सर्द हो गया। उनके मना करने के बावजूद आदित्य काफी प्यार से राधिका के साथ पेश आ रहा था। गौतम के चेहरे के भाव देखते ही आदित्य समझ गया था। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं जानता हूं आप मुझसे नाराज होंगे और उस पर हर पल नजर भी रख रहे हैं, लेकिन मैं उसे इस हाल में नहीं देख सकता हूं। मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है, सीधे सीधे बताओ कि उसकी बेटी से कॉन्टैक्ट हो पाया या नहीं, गौतम ने गुस्से में पूछा। मैंने उसे मैसेज किया था और कॉल भी करने की कोशिश की थी, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रही है, आदित्य ने जवाब दिया। जवाब नहीं दे रही है तो जाकर खुद उसे यहाँ लेकर आओ, और याद है ना, उस दूसरे सब्जेक्ट से भी मिलना है जिसके सालों पहले बेटा हुआ था। मुझे किसी भी हाल में उस औरत का बच्चा चाहिए, चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, गौतम ने सख्ती से जवाब दिया और फिर वहां से चला गया। उनके जाते ही आदित्य के चेहरे पर परेशानी के भाव थे। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, अंजलि चौहान, या यूं कहूं कि अंजलि राजवंश, मुझे तुम्हें फिर से मिलना ही होगा ताकि तुम्हारे बेटे तक पहुंच सकूं। गौतम की बात को आदित्य या अर्पित कोई भी नहीं टाल सकता था। अर्पित भी उनके बताए अनुसार गोवा के लिए निकल गया था, तो वहीं अब बारी आदित्य की थी। वो भी दिल्ली जाने के लिए निकल गया था। आखिर उसे अंजलि के बेटे यानी अभिमन्यु राजवंश को हासिल जो करना था। ओके, इनके जो भी एक्सपेरिमेंट्स रहे हों उनमें लगता है कि इशिका और अभिमन्यु की राहें यहां आकर फिर टकराएगी। कहानी के साथ बने रहिए, अगले पार्ट पर मिलते हैं। पढ़कर रेटिंग देकर कमेंट कर दीजिएगा।